gopijana ballabha girivaradhari jashodanandana brajanaranjana Yashodanandana Brajanaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira जय ओम विष्णु बाल ब्रह्मस्पराज आचार्य स्वान गिरी शेषि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुवांतरा विष्णु भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीदादा शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जाय। ग्रंथराश्रम भागवतम की जाय। निताय गौर हरि परमानंदे हरि हरिव। तो कल क्लास अंग्रेजी में हो गया तो इसलिए हिंदी में बोलने के लिए बोल रहे हैं लोग। तो आज हम लोग भागवत महापुराण से पढ़ेंगे सातवां स्कंद अध्याय एक श्लोक 17, 18 और 19। सिक्योरिटी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बोर्ड पर श्लोक संख्या 19 लिखा हुआ है, इसका हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। प्रभु देर विल बी इंग्लिश ट्रांसलेशन बैक साइड। देर विल बी इंग्लिश ट्रांसलेशन बैक साइड। हिंदी वाले आगे आ जाओ, तुम लोग जगह मत छेड़ो अंग्रेजी वाले बैठने में। शपथ हो असकृत विष्णु यत् ब्रह्मपरम् अव्ययम् श्वित्रा न जातः जिह्वायां न अंधम् विविशतु तमः। तमः सपतो सकृता विष्णु यद् ब्रह्मा परमव्ययाम् श्वित्रो न जातो जिह्वायाम् नान्धं विवसतु तमः सपतो रसकृत विष्णु सपतो रसकृत विष्णु यद् ब्रह्मा परमव्ययाम् श्वित्रो न जातो जिह्वायाम् न अन्धा विवसतु तमः सपतो रसकृत विष्णु यद् ब्रह्मा परमव्ययाम् शित्रो न जातो जिह्वायाम् नान्धा विवसतु तमः माता जी सपतो निंदा करने वाले शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही का असकृतः बारंबार विष्णु भगवान विष्णु को कृष्ण को या जो ब्रह्म परम परम ब्रह्म अव्ययम् बिना किसी कमी के स्वित्रा श्वेत कुष्ठ नहीं जात प्रकट जिह्वायाम् जिह्वा पर नहीं अंधम् अंधेरा विविशतु वे घुसे प्रवेश किए तमहा नरक में कोई जरूरत नहीं। यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम तुम लोग सबसे पीछे क्यों बैठे हो आगे आ जाओ कौन बैठा है और वहां पर बलदेव वो कौन बैठा है उधर लोग परिक्रमा करेंगे बहुत जगह है चाहे है कुछ लोग जान कर वहां पीछे बैठे ताकि धीरे से चले जाएंगे आसान रास्ता है जाने के लिए आसान रास्ता बहुत जगह जाने का है चुनना पड़ेगा किस रास्ते से जाना है हमको यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की बारंबार निंदा करते रहे तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे न तो उनकी जीभों में कभी श्वेत कुष्ठ रोग हुआ न वे नारकीय जीवन के गहन अंधकार में प्रवेश हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। थोड़ा साउंड कम किया जाए, ज्यादा है। तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा भगवद गीता 10:12 में अर्जुन ने कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया है, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवाम। आप पर ब्रह्म परम धाम तथा पवित्र करने वाले हैं, यहां पर इसकी पुष्टि है। विष्णु यद ब्रह्म परमम वयम, विष्णु ही कृष्ण हैं, कृष्ण विष्णु के कारण हैं, इसके विपरीत नहीं। द हेलीकॉप्टर इज मेकिंग नॉइज, यू कैन टेक वन फैन इज हियर, डजंट मेक नॉइज। इसके विपरीत नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म कृष्ण के ही कारण नहीं है, अपितु कृष्ण ब्रह्म के कारण है, अतएव कृष्ण पर ब्रह्म है। यद ब्रह्म परम वयम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए, उन्हें कोई शंका नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि लोगों में शंका होगी। तो जब भी प्रश्न कई एक प्रकार के होते हैं, एक तो जब अपना शंका होता है तब प्रश्न करना चाहिए। कभी कभी लोग आपस में बात भी करने लगते हैं जिसमें शंका उत्पन्न होता है, तो भी प्रश्न कर लेना चाहिए। आजकल यहां नहीं आते हैं, पहले महाप्रभु दासिक थे, वो आया करते थे और कई एक ऐसा प्रश्न करते थे, एक ही प्रश्न कई एक बार करते थे अलग अलग वक्ताओं के साथ में। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, कम से कम प्रश्न करते हैं, कभी कभी सामान्य प्रश्न भी, जैसे ऑर्डिनरी लोगों के समझदारी के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रश्न करना बुद्धि का परिचायक है, कौन कितना बुद्धिमान है उसे पता चलता है। प्रश्न करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, अन्य लोगों के कल्याण के लिए। तो परीक्षित महाराज सबके कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं कि भगवान में विषमता देखी जा रही है। भगवान कहते हैं सब प्रकार सबके लिए सम हैं, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिय। उनके लिए कोई प्रिय नहीं है, कोई द्वेषी नहीं है, फिर भी दिखाया जाता है कि देवताओं के लिए, भक्तों के लिए वे हमेशा पक्ष लेते रहते हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। इसे सीखना चाहिए कि जब भी कोई प्रश्न करता है तो उत्तर कैसे देना चाहिए। हालांकि ये फिलोसफिकल क्वेश्चन किए थे परिचित महाराज, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ग्राउंड बना रहे हैं ताकि लोग समझ। ये प्रश्न कोई ऑर्डिनरी प्रश्न नहीं था कि भगवान सबके लिए समान हैं, तो दिखाई पड़ता है कि वे विषमता का व्यवहार करते हैं, किसी को रिवार्ड करते हैं और किसी को पनिश करते हैं। तो ये विषमता दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? तो इस सिद्धांतिक प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी सिद्धांतिक प्रश्न का उत्तर सिद्धांतिक रूप से परीक्षित महाराज को बतला सकते हैं 1-to-1 में, लेकिन ये कथा चल रही थी जहां पर हजारों हजार ऋषि लोग थे,
कुछ गांव वाले भी आ गए थे सुनने के लिए, कथा गांव में हो रही थी ना, ये सुकताल में कथा हो रही थी, तो गांव वाले भी आ गए थे, उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब सब लोग वहां पर आ गए थे। तो ऋषि लोग ही नहीं थे, जब कथा हो रही थी तो देवता लोग भी वहां पर आए थे। वर्णन किया गया है भागवतम में कि देव लोग से लोग गंगा जी में डुबकी लगाए और सीधे पहुंच गए सुकताल। नारद ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवर्षि महर्षि मुनि सब लोग वहां पधारे हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं प्रश्न का। देखिए, कहानी एक ऐसी वस्तु है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। कहानी कह कर करके यदि सिद्धांत प्रतिपादित किया जाए तो व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई एक्सपर्ट मां होती है, बच्चों को यदि दवा देना होता है, दवा थोड़ा कड़वा होता है लेकिन उसमें हनी मिला देती है। एक्सपीरियंस है आप लोगों को ना, हम लोग कभी ना कभी बीमारी बचपन में हुई होगी, तो जब मां दवा देती है तो थोड़ा हनी मिला देती है ताकि बच्चा दवा ले सके। मां चाहती है बच्चा को दवा देना ना कि हनी देना, लेकिन चूंकि हनी है इसलिए बच्चा ले लेता है। तो वैसे ही जो भगवत भक्त लोग हैं, शुद्ध भक्त लोग हैं, एक्सपर्ट जो लोग हैं, वक्ता लोग, वे लोग जब भी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो वे थोड़ा हनी मिला करके देते हैं ताकि लोग समझ सकें। ग्राउंड हनी मिलाना मतलब ग्राउंड क्लियर करना, फेवरेबली स्वीकार कर लें। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी प्रश्न का उत्तर देने से पहले ग्राउंड क्लियर करते हुए कहते हैं, अत्र एव उदाहृत्यम पूर्वम इतिहास स्वर्षिणा प्रत्या महाकर्तो राजन पृछते अजात शत्रवे। महाराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, पूर्व काल की बात है। देखिए, इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, वो भी ऐसे इतिहास का जिसका संबंध परीक्षित से डायरेक्ट था। तो यदि हम किसी बात को कहें और खानदान का बात कहें, अपने परिवार का अच्छा बात करें किसी के परिवार का, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो कई एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन ठीक ऐसे ही एक घटना घटी थी पहले, उसी इतिहास को कहते हैं, मैं उसी इतिहास को बतलाता हूं। अत्र एव उदाहृत्य पूर्वम इतिहास सुर ऋषिणाम, कहते हैं मैंने पहले देवर्षि नारद से ऐसा कुछ सुना था कि एक समय की बात है, भगवान के प्रसन्नता के लिए महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ प्रश्न किया था। तो डायरेक्टली प्रश्न का उत्तर न देकर के अब इतिहास का वर्णन करने लगे। और कल भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने बड़ा अच्छा तरह से सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए और इस कथानक को कहा। तो यहां पर जो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए थे, उन्हीं प्रश्न को लेकर के सुखदेव गोस्वामी आगे चल रहे हैं। प्रश्न इतना ही था कि जब महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ कर रहे थे तो स्वाभाविक है कि जब घर में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग सभी सगे संबंधियों को बुलाते हैं, तो बहुत लोग वहां पर आए हुए थे। अब प्रश्न था कि अग्र पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा किसकी हो, तो कहते हैं दृष्टवा महा अद्भुत राजा राजसु ये महाकृतौ वासुदेवी भगवती साजुज्य चेदि भूभुज तत्रासीन सुर ऋषि राजा पांडुपुत्र स्तकृतौ प्रपक्ष विस्मितया मुनिना श्रमतामिदम्। उन्होंने देखा कि शिशुपाल का गला भगवान काटे और वह भगवान में विलीन हो गया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। और प्रश्न करने के बाद आगे श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, एतद वेद तुम इच्छामः सर्व एव वयम् मुने। यहां पर शब्द आया हुआ वयम्, अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कहते हम लोगों, सबने देखा, जितने लोग वहां पर उपस्थित थे वे सब देखे कैसे शिशुपाल का जब भगवान गला काटे तो शिशुपाल की जीवात्मा जो है भगवान में विलीन हो गई। इसलिए आश्चर्य हुआ और कहते हैं एतद वेद तुम इच्छामः सर्व एव, एव मतलब निश्चय ही, वयम मुने, हे देवर्षि नारद, हम सब लोगों के मन में ऐसी शंका हो गई। कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या युधिष्ठिर महाराज सबके मन को जानते थे? वो कह सकते थे कि मुझे ऐसी शंका हुई है, ये वयम शब्द क्यों कह रहे हैं? जब भी कथा होती है और कथा का विषय क्लियर हो तो वक्ता और श्रोता दोनों में एक संबंध स्थापित होता है, एक तार जाता है, करंट, जो सब में एक समान होता है। यानी जितने श्रोता होते हैं जो अटेंटिवली सुन रहे हैं उनमें एक ही तार जाता है, और वह तार क्या है, वह संबंध क्या है। ऐसे माला है, विभिन्न प्रकार के फूल हैं लेकिन इसमें एक ही धागा है जो सबको बांध करके रखा है। ठीक वैसे ही श्रोता रूपी विभिन्न प्रकार के फूल हैं, फूल रूपी श्रोता हैं, जय श्री श्री गौनताय की जाए, राधा प्यारी की जाए, सुधाराम सम्मान की जाए, तो अनेक फूल रूपी श्रोता हैं, सब श्रोता फूल हैं, लेकिन इनको बांध करके जो रखा है जो तार, वह है कृष्ण कथा। तो जो वक्ता है जो प्रवचन करते हैं, यदि वह उनका मति कृष्ण में लगा हो, कृष्ण मति, वक्ता का एक गुण है कि वह कृष्ण कांसस हो, कृष्णमती, यदि उसका मन कृष्ण में लगा होगा तो श्रोता का मन भी वो कृष्ण में लगा सकता है। यदि उसका ही मन कृष्ण में न लगा हो, कृष्णमती अनपेक्षा, बिना अपेक्षा के, कोई रिटर्न की भावना न हो, यदि रिटर्न की भावना होगी कि मैं कथा कहूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, फिर दान देंगे, चेला बनेंगे, ये करेंगे, तब वहां कृष्ण नहीं है। लेकिन यदि लोगों के दिल में कृष्ण को संचारित करने की भावना है, अनपेक्षा, तब एक ही तार सब में जाता है। इसीलिए यहां पर वयम शब्द कहा गया है, यानी तार एक ही है, जो परीक्षित महाराज के मन में शंका है वही शंका सबके मन में है, वहां भगवान स्वयं विद्यमान हैं, वहां सब लोग इस घटना को लोग देखे। तब उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये जानने की बड़ी इच्छा है, भगवान निंदया बेनो दुजय तमसिपादित, एक ऐसे आश्चर्य की बात है। एक बदमाश बेन था, आप लोग बेन कथा सुनना चौथे स्कंद में, वह अभी भगवान का भगवद निंदय, साधुओं का भगवान का उसने खूब निंदा किया, और उसका गति क्या हुआ कि ब्राह्मण लोग उसे शापित कर करके और नरक में भेज दिए। और इधर दम घोष सुत आप आरभ्य कलभाषणात् संप्रति अरमसि गोविंदे दंत वक्रश्च दुरुमति। यहां पर दो लोगों का बात हो रहा है, एक दम घोष और एक दंतवक्र। दमघोष मतलब शिशुपाल और दंतवक्र मतलब दंतवक्र। यहां पर देखिए घटना हुई है कि शिशुपाल का गला कटा है, न कि दंतवक्र का। कोई प्रश्न कर सकता है तो युधिष्ठिर महाराज दंतवक्र के विषय में क्यों बात यहां पर किए। ये दंतवक्र और शिशुपाल दोनों का संबंध था कृष्ण से, तो इस संबंध को लेकर के यहां पर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। कितना सुंदर बात है कि एक भाई मौसेरा भाई दो अन्य मौसेरे भाई के विषय में बात कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज की माता, शिशुपाल की माता और दंतवक्र की माता, ये तीनों सहोदर सहोदरी थी, एक ही बाप मां के पुत्री थी। तो शिशुपाल का नौ बात कहकर के शिशुपाल और दंतवक्र दोनों का बात कह रहे हैं। दम घोष सुत पाप आरभ्य कलभाषण संप्रति अमरसि गोविंदे दंतवक्रश्च दुर्मते। ये दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दुर्मति थे। शिशुपाल और दंतवक्र हरिवंश पुराण में यह वर्णन आता है कि एक राजा थे जिनका नाम था कृष्ट, महाराज जदु के पुत्र थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था माद्री और दूसरे का नाम था गंधारी। माद्री से दो पुत्र हुए, युधाजित और देवमीड। देवमीड के जो पत्नी थी उनका नाम था अश्वमुखी। अश्वमुखी, अश्वमुखी और देवमीड से 10 पुत्र और 5 कन्याएं हुई। 10 पुत्रों में से हैं प्रथम जिनका नाम था, सॉरी उन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम था सुरसेन, और सुरसेन का विवाह हुआ था भोज राजकुमारी से। तो सुरसेन के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। 10 पुत्र में से प्रथम जो थे, ऐसे प्रथम प्रथा थी लेकिन क्रम में पहले पुत्रों का नाम दिया गया है, तो अनकदुंद भी यानी वसुदेव जी, उसके बाद देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कनवक, बासावन, गृंजिम, श्याम, समीक और गंडोस। इस इन 10 पुत्रों में से 3 का खानदान चला और अन्य लोगों का नहीं चला। अनकादुंद भी यानी वसुदेव जी के 14 पत्नियां थी और कई एक पुत्र हुए। उसी प्रकार से देवभाग के पुत्र थे उद्धव जी, और देवश्रवा के जो पुत्र हुए उनका नाम था शत्रुघ्न, जिनको बाद में एक राक्षस हरण कर ले गया था और वो जंगल में अकेले पड़े थे, तो निषादों ने उनका पालन किया और वे हुए एकलव्य। तो इस प्रकार से ये 3 भाइयों के ही संतान थे और लोग निसंतान थे, और वसुदेव जी सबके मुखिया थे। 5 बहन थी, जिनमें से प्रथम थी प्रथा यानी कुंती, जिनके पुत्र थे पांडु, जिसमें युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, पृथुकृति जिनका विवाह हुआ करुष देश के राजा से, और उनका पुत्र हुआ दंतवक्र। उसके बाद श्रुतिकृति जिसकी पुत्री हुई भद्रा, जिसे भगवान कृष्ण का बाद विवाह हुआ, श्रुतसर्वा जिनका विवाह हुआ चेदी नरेश से और जिनके पुत्र हुए शिशुपाल, और राजाधिदेवी जिनकी पुत्री हुई मित्रवृंदा जो कृष्ण की पटरानी बनी। तो इस प्रकार से ये 5 पुत्रियां और 10 पुत्र थे महाराज सूरसेन के। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज मौसेरे भाई हैं दंतवक्र और शिशुपाल के, दोनों के विषय में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बचपन से ही दम घोषो पाप आरभ्य। चेदी नरेश जो शिशुपाल थे दमघोष और श्रुतसर्वा के पुत्र, जब उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही बच्चे प्रायः रोते हैं, लेकिन एक गधा के समान। गधा क्या करते हैं कोई जानता है कैसे? राधाना स्वामी अच्छा हो आवाज निकाल लेते हैं, तो गधे के समान वो चिल्लाने रेंगने लगा है, जैसे गधे रंगते हैं। बड़ा खूंखार था देखने में, उसके 4 हाथ थे और ललाट पर एक और एक्स्ट्रा आंख था, त्रिनयन। तो श्रुतसर्वा और दमघोष निर्णय किए कि इस बालक को त्याग देना चाहिए। ऐसा पहले हुआ जरासंध, जरासंध का जब जन्म हुआ था तो हाफ बॉडी था, एक हाथ, 2 बच्चे जन्म थे, एक हाथ एक पैर एक आंख एक नाक वाले, तो उसको भी उसके माता पिता त्याग दिए थे। और जरा नाम की एक राक्षसी थी जिसे उनको जोड़ा था, इसलिए उनका नाम पड़ा था जरासंध। तो वैसे ही दमघोष और श्रुतसर्वा ने निर्णय किया कि इस बालक को त्याग देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। समझा सलाह किए, पुरोहित को बुलाए, सब लोगों से बात किए। तब तक से तैयारी हो गई थी कि इस बालक को त्याग देना चाहिए, तब तक से आकाशवाणी हुआ, और आकाशवाणी ने महाराज दमघोष को संबोधित करते हुए कहा कि हे चेदी नरेश, यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये माता पिता का सेवा करेगा, उतना ही नहीं यह बहुत पराक्रमी बलशाली शक्तिशाली पराक्रमी होगा, इसीलिए आप इस शिशु का पालन कीजिए। तो आकाशवाणी का शिशु का पालन कीजिए, इसलिए उसका नाम पड़ा शिशुपाल। शिशु का पालन करो, इसलिए उसका नाम पड़ा शिशुपाल। तो शुद्ध सर्वा इतना आकाशवाणी था, तो बेचारी केवल सुनी। तो बालक के इस हां, और आकाशवाणी ने यह भी कहा कि यह भले ही कुरूप लग रहा है, लेकिन कालांतर में यह ठीक हो जाएगा। तो श्रुत सर्वा ने प्रश्न किया आकाशवाणी से कि दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आप जो भी हैं, देवता हैं, उपदेवता हैं, जो भी हैं, आप बतलाइए कि हमारे पुत्र का ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाथ है दो, और तीन आंख है, यह देखने में बड़ा कुरूप लग रहा है, जिसके तम हम लोग इसे फेंकना चाहते थे, लेकिन आप कह रहे हैं तो इसका पालन करेंगे, लेकिन बतलाइए कि इसका मृत्यु किसके हाथ से है। तो आकाशवाणी ने कहा कि जिसके यदि यह किसी के गोद में जाए, और जिसके गोद में जाने से इसका दो एक्स्ट्रा हाथ और तीसरा आंख विलुप्त हो जाए, वही इसका काल होगा। तो यह समाचार कोई सामान्य समाचार नहीं था। कोई आज बच्चा जन्म ले ले चार हाथ वाला और तीन आंख वाला, पेपर के हेडलाइन में होगा, यही ना, टीवी वाले दिन भर यही चलाएंगे, दिन भर यही चलाएंगे। और उतना ही नहीं, सब जगह यह बात का विषय बन जाएगा, जहां भी जो जानते हैं उनको एक बच्चा हुआ जैसे चार हाथ है और तीन आंख है, तो स्वाभाविक ही यह बात भी उस समय टीवी नहीं था, पेपर नहीं था, लेकिन कान कान से सुनते सुनते यह बात बढ़ गया। और मगध बहुत बड़ा विशाल राज था, यहां तक कलयुग के प्रारंभ तक जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तब तक मगध बहुत विशाल राज था। और चेदी नरेश और करुष, ये दोनों जो देश था वह मगध के अधीन था, यानी जरासंध के अधीन था। तो जरासंध अपने समय के बहुत शक्तिशाली राजा थे। तो जरासंध स्वयं आए शिशुपाल के को देखने के लिए, और जितने सगे संबंधी थे सब लोग आए। जब ऐसे दम घोष जी बड़े सज्जन व्यक्ति थे, और श्रुत सर्वा भी बड़ी निपुण थी, आखिर भगवान की बुआ थी, तो लोग बहुत सम्मान करते थे। सब लोग आए कि बच्चा उत्पन्न हुआ है तो देखने के लिए आए। तो श्रुत सर्वा को आकाशवाणी था कि जिसके गोद में जाएगा बच्चा, और यदि एक्स्ट्रा हाथ और आंख चला जाएगा, वही उसका काल होगा। तो सबके गोद में देते थे बच्चे को, आप लीजिए लीजिए। बहुत लोगों के गोद में बच्चा गया, लेकिन किसी के गोद में जाने से ये खत्म नहीं हुआ। विष्णु पितामह स्वयं इस कथा को भीमसेन से बतलाए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जग में जब यह अत्याचार कर रहा था, भगवान को गाली दे रहा था, तो पांडवों से रहा नहीं जा रहा था। भीमसेन उबल रहे थे गुस्सा में, और संतावना दिए विष्णु पितामह। और बाद में शिशुपाल के कथा को बताए। तो उसी क्रम में जब सब लोग आ रहे थे बालक को देखने के लिए, तो कृष्ण और बलराम भी द्वारका से आए। कृष्ण बलराम आए बुआ जी के पास, बुआ जी का और फूफा जी का चरण स्पर्श किए, और कृष्ण बलराम ऐसे भी बड़े प्रिय थे, भाई का बेटा, भाई के बेटे बड़े प्रिय होते हैं। मैं जानता हूं बुआ लोग तो अपने बेटों से भी कहीं ज्यादा भाई के बेटों का सम्मान करती हैं, खिलाना पिलाना सब बच्चा से। जब फॉर्मालिटी ये पूरा हो गया तब सबके गोद में सर्वा जी अपने पुत्र को देती थी। तो कही भाई अब तुम्हारे भाई जन्म लिया है, तुम लोग नहीं लोगे? तो कृष्ण कहा जरूर बुआ जरूर लेंगे, लाइए। तो कृष्ण के गोद में जब सर्वा ने दिया शिशुपाल को, जब ही कृष्ण अपने गोद में शिशुपाल को लिए कि उसका दोनों हाथ और तीसरा आंख छुमंतर हो गया, गिर पड़ा। तो बड़ा भय हुआ श्रुतसर्वा को। अब श्रुतसर्वा हाथ जोड़ करके और कृष्ण से कहती है कि पुत्र मुझे बहुत भय सता रहा है, तुम सब लोगों के भय को दूर करने वाले हो, क्या तुम मेरा भी भय दूर करोगे? तो भगवान कहते हैं मां भयस्तम देवी धर्मज्ञे नामतो अस्मि भयम तव ददामी कंबरम किंच करवाणी पितृसुज्जवस। कहते हैं पितृसुज्जवस, हे मेरे पिता की बहन, हे मेरे पिता की सगी यानी बुआ जी। कहते हैं धर्मज्ञ, आप धर्म परायण हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि श्रुतसर्वा जी बड़ी धर्म परायण थी और उनका बेटा शिशुपाल उत्पन्न हुआ धर्म परायणा की। तो कहते हैं आपको मुझसे भय करने का कोई कारण नहीं दिखता है, आप मुझसे भयभीत न हो। यदि आपको कोई भय है भी तो हमें बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कहते हैं सक्यम वा यदि वा सक्यम, जो कुछ मुझसे हो सकता है मेरे बस में है वो तो मैं करूंगा ही, जो मेरे बस में नहीं है वो ही मैं करूंगा। करिष्यामि वचस्तव, मैं आपको एक वचन देता हूं कि जो मेरे बस में है वो करूंगा और जो मेरे बस में नहीं है वह भी करूंगा। एवं उक्ता तथा कृष्ण ब्रवीह यदुनंदनम, यदुनंदन भगवान कृष्ण इतना कहकर के शांत हो गए। तब बुआ जी अब कह रही जो भय का कारण था, कह रही शिशुपालस्य अपराधम क्षमेत्थास्तम महाबल, हे महाशक्तिशाली कृष्ण, मेरा यह पुत्र शिशुपाल अनेक प्रकार से आपका अपराध करेगा, कृपा करके इसे अपना समझते हुए, अपना अनुज समझते हुए मत कृते यदुर सारदुर्लह विद्देना मे वरम प्रभो, मेरे खातिर मत करते, मेरे लिए मेरे पुत्र के अपराधों को आप क्षमा कर देना, आप यह वचन हमें दो, यही मांग रही थी बुआ जी। तो भगवान कह रहे हैं अपराध सतम क्षाम्यम, हे बुआ जी अपराधम सतम क्षाम्यम मया ह्यस्य प्रतिश्वस, हे प्रतिश्वस, हे बुआ जी आपके बेटे के द्वारा किए गए 100 अपराध को मैं क्षमा करूंगा, 100 अपराध क्षमा करूंगा। पुत्रस्य तेव धारहस्य मा तुम शोके मनोवृथा, आप इसके लिए शोक न करें, मैं आपके बेटे को वध नहीं करूंगा, उसका 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद होगा 101 होगा तो अब मुझे मत रोकिएगा। तो भगवान ने यह वचन दिया था। तो उसी बात को युधिष्ठिर जी यहां पर कह रहे हैं कि दम घोष सुत पापम आरभ्यम कल भाषणम, जब ये तोतली बोली बोल रहे थे, बोलने भी नहीं इन लोगों को आ रहा था, तो ये बदमाश पानी पी पी कर करके और भगवान गोविंद को एक गाली दे रहे थे, दुर्मति। भगवान का निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए, या वैष्णवों का निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पांडवों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी का आप लोग लेक्चर सुनो, और जब प्रभुपाद जी मायावादियों का नाम लेते हैं, शुरू शुरू का लेक्चर सुनो, 60s का, सॉरी 60s, 67, 70s का, जब मायावादियों का प्रभुपाद जी नाम लेते हैं तो बड़ा जोर से बोलते हैं, गुस्सा से बोलते हैं, क्योंकि ये मायावादी लोग कृष्ण के अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी। ये लोग कहते हैं कृष्ण का कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, यही कहते हैं ना मायावादी लोग, कोई रूप नहीं है। तो इनडायरेक्टली कोई आपको कहे आपके बाप को, कैसे फील होगा? मैं फीलिंग कराना चाहता हूं। कोई कहे कि तुम्हारा बाप अंधा है, उसे आंख नहीं है, तुम्हारा बाप बहरा है, तुम्हारा बाप लूला है, लंगड़ा है, तो क्या हम लोग आनंद आएगा, गुस्सा आएगा ना? जा पड़ते बदमाश नहीं क्या, और बाप के विषय में ऐसा बात कर रहा है, गुस्सा आएगा। तो वैसे ही भगवान के विषय में यदि कोई ऐसा कहता है जो मायावादी लोग कहते हैं, या जो भी कहता है कि भगवान निराकार हैं, उन्हें कोई आकार नहीं है, उन्हें झापड़ दे देना चाहिए। कई एक तरीका है, उसको उत्तर दो, झापड़ दो ना तो चले जाओ, तीन तरीका है। तुम्हारा युधिष्ठिर इत्यादि झापड़ देने के लिए तैयार थे शिशुपाल को, जिनका जुजो अस्वस्था तैयार हो गया था, भीम गदा उठा लिए, अर्जुन गांडी उठा लिए थे, लेकिन भीम भीष्म पितामह सबको शांत कर रहे थे, क्योंकि भीष्म जी जानते थे इस सत्य को, उन्हें भी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो जानते थे। तो बचपन से ही, जन्म से ही गाली दे रहे थे, कहते हैं सपतो असकृत, ये दोनों दंतवक्र और शिशुपाल। तो शिशुपाल का तो मैं कथा संक्षिप्त ला दिया, दंतवक्र का भी कथा वर्णन किया गया हरिवंश में, और कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर ढंग से किए हैं। जब शिशुपाल का वध हो गया, ऐसे दंतवक्र कृष्ण का गाली दे रहा, कृष्ण को गाली दे रहा था, लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं हो रहा था, सब इनडायरेक्टली वो सब कर रहा था। और मगध नरेश जरासंध का जब वध हो गया, और वध भीम ने किया, जरासंध के वध से पहले दंतवक्र का खाना पीना ठीक था युधिष्ठिर इत्यादि के साथ में, मतलब नेवताहकारी था, आते थे जाते थे, और कृष्ण से भी अच्छा संबंध था, भले गाली था सामने। कई एक प्रकार के लोग, कुछ लोग होते हैं मुंह फट होते हैं, मुंह पर गाली देते हैं, कुछ लोग पीछे देते हैं, जैसे हमारे ब्रह्मचारी लोग आगे नहीं गाली देंगे, पीछे गाली देंगे, है ना, निंदा करना है पीछे कर लेते हैं। तो ये दंतवक्र भी वैसे ही था, पीछे गाली देने वाला मिश्र था, शिशुपाल आगे गाली देता था, उसमें कोई भय नहीं था, लेकिन दंतवक्र पीछे गाली देता था। लेकिन जब मगन नरेश जरासंध का वध हो गया, जब वो पूरा कथा सुना कि कैसे भीम ने मारा, तो भीम पर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन जब उसने सुना कि भीम को तो बुद्धि कहां है मारने का, वो तो कई एक बार परास्त हो गया था, वो तो कृष्ण ने अपना बुद्धि दिया फाड़ करके साइड में कर कर करके जरासंध के अंत करने का, तो कृष्ण से बहुत गुस्सा हुआ। तो इस प्रकार से राजस्व जग में सब गए थे, लेकिन दंतवक्र नहीं गया था, दंतवक्र नहीं गया था, उसे इतना गुस्सा था युधिष्ठिर से। इधर शिवाजी गोस्वामी इसका वर्णन किए हैं गोपाल चंपू में, दंतवक्र लीला का, जब शिशुपाल वध का जब वह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसके मित्र, उसके मालिक, रक्षक जरासंध को मार दिए थे, सालों को मार दिए थे, शिशुपाल को ही मार दिए, वो और दूसरा कौन था, वो पांडु कृष्ण कहते वासुदेव पौंड्रक को ही मार दिए थे। तो इसे बहुत गुस्सा था, अब तक सामने नहीं आया था, समझता पीछे से। तो भगवान हस्तिनापुर से द्वारका लिए के लिए निकले थे और यह दंतवक्र द्वारका पर आक्रमण कर दिया। द्वारका में बहुत उत्पात मचाया दंतवक्र, और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न आकर के दंतवक्र का सामना कर रहे थे, लेकिन प्रद्युम्न से भी भारी पड़ रहा था दंतवक्र। कोई ऑर्डिनरी थोड़े था ये, जय और विजय थे। तब तक से भगवान आ गए। भगवान को आते देख दंतवक्र सब कुछ छोड़ करके, केवल गदा लेकर के, सेना भी नहीं लिया, रथ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, इतना गुस्सा में था, और गदा लेकर के दौड़ा कृष्ण तरफ। और कृष्ण को गाली गलौज नहीं किया, बड़ा अच्छा से बात किया दंतवक्र, कहा कि नाता में तो तू मेरा भाई है, तो मेरे मामा का बेटा है, और तू मेरा संबंधी है, प्रेम रखना चाहिए, लेकिन मैं करूं क्या, तूने कभी प्रेम नहीं रखा हम लोगों से। दंतवक्र जन्म से ही कुरूप था, उसका दांत दो था उभड़ खाबड़ था, नीचे ऊपर, इसका नाम था दंत वक्र, आगे पीछे दांत था, एकदम राक्षस जिसे हम देखते हैं राक्षस समान, दांत निकला हुआ था, उबड़ खाबड़ था, उसका बाल भी लगता था कि सरपत का वो नुकीला कुश का कुश ग्रास जैसा, ऐसा बाल बाहर निकला हुआ था, तो देखने में बड़ा भयावह था दंतवक्र। आप लोग फोटो देखना दंतवक्र का कृष्ण बुक में है, देखना उसका दाढ़ी ऐसे निकला हुआ है, वो बाल निकला हुआ ऐसे, वो तेल लगा करके बेचारा कंघी भी नहीं कर सकता था, उसका बाल ऐसा खड़ा था बिल्कुल, और दांत बिल्कुल अभद्र रूप से थे। एनीवे, तो जब ये बात कर रहा था और कहा कि तू मेरे मामा के बेटे हो, संबंधी हो, लेकिन तू संबंध निभाना ही नहीं जानता है, अरे हमारे मित्र मगन नरेश को मार डाला, सलो को मार डाला, और पौंड्रक को मार डाला, खैर संबंधी नहीं थे लेकिन हमारे मित्र थे, हमारे मित्र तुम्हारे मित्र हुए, उन लोगों को मार डाला, अरे वो तो छोड़ो, शिशुपाल तो हम लोगों का भाई था, तू शिशुपाल को मार डाला, और मैंने सुना है कि तू मुझे भी मारने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हें मारूं मैं। और इस प्रकार से वार्ता करके क्रोध में आकर के दंतवक्र प्रहार किया कृष्ण पर, और अपने गदा से एक गदा दे मारा कृष्ण के सिर पर, लेकिन कृष्ण का कुछ भी नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। और कृष्ण भी कहे कि ठीक है, जितना आप दिए उतना ही मैं भी दे रहा, आप सिर पर मारे मैं आपके दिल पर मारता हूं। और भगवान अपने उठाए गदा कौमुदी को और दे मारे उसके वक्षस्थल पर, उसका वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और प्राण पखेरु उसके उड़ गए। और उसके बाद भगवान अपने अस्त्र शस्त्र को समुद्र में डाल दिए, कहे कि आज के बाद अब मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भगवान का काम खत्म हो गया, शिशुपाल चला गया, बेन दिए उसको, और दंतवक्र बेन दिए, काम खत्म, जय विजय का उद्धार कर दिए, मुकुंद अपना काम कर दिए, और बाद में अस्त्र शस्त्र को डाल दिए समुद्र में। इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन से भगवान ने कहा था कि मैं मुझे लेकर क्या करोगे, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भगवान वचन दे चुके कहती थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये थे दंतवक्र और शिशुपाल, यहां पर सपतो निंदा कर रहे थे, गाली गलौज करते असकृत, एक बार नहीं बारंबार भगवान विष्णु का जो कौन है, यद ब्रह्म परम अव्ययम्, जो पर ब्रह्म है, उन भगवान का ये लोग निंदा बार बार कर रहे थे। हमें समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज में कुतन कितना गुस्सा था। कहते हैं शत्रु न जातु जिह्वायाम, युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे। अपिपला धर्मराजा पितृवत् रंजना प्रभु निष्प्रिय सर्व कामे भ्यो कृष्ण पादानुसेवया, जो निरंतर कृष्ण की सेवा में जो लगा रहता है उस व्यक्ति के मुख से अभद्र बात नहीं निकल सकता है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मां बहन का गाली देगा? गाली देंगे? अब दे दो गाली, पहले देते थे। जब भगत बन गए इस बात गाली नहीं देते हैं। हाँ नॉनसेंस आजकल थोड़ा कह लेते हैं, इससे ज्यादा गाली नहीं देते हैं। तो बाहर के लोग सुनो क्या गाली देते हैं, बाप रे बाप, कान फट जाएगा गाली सुन करके। मां का, बहन का, भाई का, सब जितना संसार में गाली सब दे देते हैं। लेकिन जो साधु बन जाता है वो गाली नहीं देता है। उतना ही नहीं, वो कर्कश भाव से, बड़ा मधुर भाव से बात करते हैं। साधु लोग सौम्य होते हैं, उनका स्वभाव सौम्य होता है, व्यवहार सौम्य होता है। अर्जुन ने इसीलिए कृष्ण से कहा, इसित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्त केशव, साधुओं का चाल चलन कैसा होता है, बोलने की शैली कैसी होती है, उनकी भाषा क्या होती है, हम लोगों को सीखना चाहिए इससे। जो आपस में झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसका मतलब कि उनका जिह्वा अन्य कामों में लगा हुआ है। जिनका जिह्वा भगवान के नाम में लगा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम उनके जिह्वा से गाली गलौज नहीं निकलेगा। और यदि निकल भी गया तो जरूर कुछ कारण होगा। और युधिष्ठिर महाराज के मुख से ऐसा बात निकल रहा है, किसके जिह्वा पर कोड़ क्यों नहीं पड़ गया, श्वेत कोड़ क्यों नहीं पड़ गया हा? और इससे तो नरक में जाना चाहिए। दो ही गाली दिए हैं, ये गाली है कि कोड़ पड़ जाए किसी को, नरक में चले जाओ। ऐसे महाराज युधिष्ठिर, आप समझ सकते हैं उनको टेम्परेचर क्या होगा युधिष्ठिर महाराज का। मर गया है, जीवित भी नहीं शिशुपाल है, फिर भी उनका गुस्सा इतना था कि बदमाश भगवान कृष्ण को गाली दिया, जो कि परब्रह्म है, परमात्मा है, जो परम धाम है, इतने पवित्र हैं, उनको गाली दिया। अर्जुन ऐसा ही कुछ दसवें अध्याय में कहते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिवम अजम विभु। प्रभुपाद जी इसी पर थोड़ा तात्पर्य लिखे हैं, कहते हैं विष्णु यद ब्रह्म परम अव्ययम, विष्णु ही कृष्ण हैं, कृष्ण विष्णु के कारण हैं। तो ये बात समझना चाहिए, ये ब्रह्म और परब्रह्म, विष्णु जो हैं वे कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण विष्णु नहीं है। विष्णु हैं वो कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण विष्णु नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मिस्टर फोर्ड का, कि जो गाड़ियां हैं वो फोर्ड गाड़ी है, लेकिन गाड़ी मिस्टर फोर्ड नहीं है। समझ गया ना? जितनी फोर्ड गाड़ियां हैं वो मिस्टर फोर्ड हैं, लेकिन जो गाड़ी मिस्टर फोर्ड की जो गाड़ियां हैं, जो फोर्ड लिखा हुआ है गाड़ी पर, वो फोर्ड की है, फोर्ड है, लेकिन जो गाड़ी है वो फोर्ड नहीं है। नहीं कि कोई फोर्ड गाड़ी देखे, अरे हम मिस्टर फोर्ड से मैं मिल लिया हूं, कोई कह सकता है? तो वैसे ही प्रभुपाद जी यहां पर कह रहे हैं कि विष्णु ही कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण विष्णु नहीं है। तो प्रायः लोग एक बात कहते हैं कि विष्णु ही कृष्ण हैं, लेकिन दूसरा बात नहीं कहते हैं कि कृष्ण विष्णु नहीं है। तो लोग प्रायः कहते हैं कि यू नो ये विष्णु ही आए हैं कृष्ण के रूप में। बात सही है, विष्णु ही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण विष्णु नहीं है। कृष्ण विष्णु के भी उद्गम स्थान है, कृष्ण से ही विष्णु आते हैं। जैसे मिस्टर फोर्ड फोर्ड गाड़ी के उद्गम स्थान है, वैसे ही कृष्ण विष्णु के कारण है, इसके विपरीत नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म कृष्ण के कारण नहीं है, अपितु कृष्ण ब्रह्म के कारण है, अतएव कृष्ण परब्रह्म है। यानी जो ब्रह्म ज्योति जो है वो निकला हुआ है भगवान से, लेकिन भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं है। वे श्याम सुंदर हैं, उनका स्वरूप है। तो युधिष्ठिर महाराज इस बात को जानते हैं, इसीलिए यहां पर इस श्लोक में भगवान का विशेषता बताया गया है कि भगवान विष्णु कैसे हैं। यद ब्रह्म परम अव्ययम्, परम अव्यय हैं, ब्रह्म हैं, सब कुछ उनसे निकला हुआ है, लेकिन परम अव्ययम्। यदि आपके पास 100 रुपया है और बाजार में कुछ सामान खरीदने जाओ तो कम होगा, घटेगा। 10 रुपए का सामान खरीदा तो 90 बचेगा, 20 खरीदा तो 80 बचेगा। लेकिन भगवान से कितना भी कुछ निकल जाए लेकिन फिर भी भगवान उतने के ही उतने रहते हैं, अव्यय हैं, जो कभी व्यय हो ही नहीं, खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। ओम प्रणमदः प्रणमिदम् पुण्यात पुण्यमुदच्यते पुनश्च पुण्यमादाय पुण्यमेव अवशिष्यते। भगवान सब प्रकार से पूर्ण है। वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दुष्टों ने पानी पी पी करके गाली दिया। इन लोगों को कोड क्यों नहीं फूट गया, इन लोग तो से नरक में क्यों नहीं चले गए। प्रश्न तो बहुत पहले युधिष्ठिर महाराज कर दिए थे, प्रश्न हो गया था कि बड़ा आश्चर्य है कि इतना पापी व्यक्ति भी वह पद प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े लोग प्राप्त करते हैं। यह अत्यंत अद्भुत है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शरीर में लीन हो गया। यह असहज मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई। प्रश्न तो हो गया था, लेकिन यहीं पर नहीं रुके थे युधिष्ठिर महाराज। पंखा चल रहा है बंद कर दो, बाइक बंद नहीं होगा, कुछ समय लगेगा बंद होते होते। तो गुस्सा हुआ था युधिष्ठिर महाराज को, और गुस्सा शांत करते 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 दो चार कद आगे बढ़ गया था कि घसीट लिए उसमें शिशुपाल दंतवक्र सब लोगों को। एनीवे कहते हैं यह बड़ा मन को भ्रमित करने वाला परिस्थिति है, आप इसको बतलाइए। तब युधिष्ठिर महाराज से नारद जी उत्तर देना शुरू कर दिए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कमेंट?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दो प्रश्न है मुझे। एक तो शिशुपाल बचपन से भगवान को गाली दे रहा है, तो राजस्वय यज्ञ के समय उसकी उम्र 60-70 साल होगी, तो क्या 60-70 साल में बचपन से जो गाली दे रहा है सिर्फ 100 गाली दिया?
जब जब कृष्ण सामने आए तब तब गाली दिया, ऐसा नहीं कि हमेशा गाली देता तो कोई काम नहीं था। जब जब सामने आए,
उधर तो लिखा है ना कि बचपन से बोलना भी नहीं सीखा लेकिन गाली दिया।
हाँ,
बचपन में तो भगवान उसको बहुत बाद में मिले।
नहीं नहीं, जब भी, अरे कृष्ण की बुआ थी भाई, जाया करते थे कृष्ण।
तो फिर 60-70 साल अगर हम देखें ना तो 18,000-20,000 दिन होते हैं, तो अगर 100 गाली अगर 18,000 दिन में दिया है तो कितना हुआ? एक 2 साल में 1 गाली हुआ।
लेकिन जब स्पेकुलेशन ही करना है जैसे आप और हम कर रहे हैं,
मैं तो गिनती कर रहा हूं प्रभु जी।
लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि वो गाली तब तथा जब कृष्ण सामने होते थे,
तो भी कम हुआ ना
उतना। लेकिन उतने बार कृष्ण सामने हुए ही नहीं ना। अब तक से हमने जितना पढ़ा है कृष्ण बुक में चाहे भागवतम में, 3 ऐसा जगह है जहां पर कृष्ण से मुलाकात हुई है, एक जब रुक्मिणी विवाह उस समय हुआ तो 2005 गाली वहां भी दिया होगा
है? बहुत कम बोल रहे हैं आप, आप सौ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं,
आप गिन लेना। अरे राष्ट्रीय जग में सौ पूरा नहीं किया था, बाकी रह गया था, वो सौ नहीं पूरा किया था। जब लोग गुस्सा कर रहे थे भगवान का चुप रहो, अभी उसका समय नहीं हुआ, गिनने दो। 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100।
तो कृष्ण के एब्सेंस में उसने निंदा नहीं किया है कृष्ण का, ये तो ईर्ष्या नहीं हुआ ना फिर, बहुत कम हुआ। कृष्ण के एब्सेंस में अगर उनका निंदा नहीं किया,
नहीं ईर्ष्या तो ईर्ष्या ईर्ष्या तो मन में किया ना, लेकिन शब्द में प्रकट किया जब कृष्ण सामने थे, मैं यही कह रहा हूं।
ठीक है भाई, दूसरा प्रश्न था कि दंतवक्र भगवान को आप बोले द्वारका में आक्रमण किया, पद्म पुराण में लिखा है कि दंतवक्र मथुरा गया सीधा, बिकॉज वो इतना गुस्से में था कि वो सीधा मथुरा गया ये सोचकर कि भगवान मथुरा में है। द्वारका में शाल ने आक्रमण किया था।
आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बतला दूं, गोपाल चंपू के अनुसार जब भगवान एक बार मथुरा छोड़ दिए और द्वारका निवास कर रहे थे, उस समय शिशुपाल का वध हुआ था, द्वारका से भगवान गए थे। महाभारत युद्ध भी हुआ द्वारका से, और भगवान द्वारका आ रहे थे जहां पर दंतवक्र, ज्यों ही सुना कि शिशुपाल मारा गया, भगवान ये द्वारका मथुरा गए हैं, वृंदावन गए हैं, कब गए हैं, अंत में गए हैं जी गोस्वामी के अनुसार।
तो दंतवक्र को मारकर वो सीधा मथुरा वृंदावन गए,
मथुरा गए, वहां सब लोगों को भेज दिए। अब लीला संवरण करने का समय आया था, उस समय भगवान भेज दिए।
थैंक यू प्रोफेसर। रामू प्रभु यू हैव समथिंग?
हाँ हाँ हाँ, सिम जी बड़ा बात कर रहे हैं, जब क्रिकेट मैच देखते हो ना तो सेंचुरी कभी कभी पूरा नहीं होता है, तो एक साथ में 100 गाली उसे देना था, तो सेंचुरी पूरा नहीं कर पा रहा था, वहां पर पूरा कर लिया 100 गाली। एनीवे, कहीं शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, तो लेट्स नॉट स्पेकुलेट। एक अच्छा स्पेकुलेशन है कि एक साथ में 100 गाली देना था उसको, तो कभी 20-25-80 तक गाली दिया, सेंचुरी पूरा नहीं हुआ। तो भगवान गिर रहे थे 95, 96, 97, 98, अब 99, अब 100 आया तब खत्म। एनीवे, लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, बट
हरे कृष्ण,
कहीं शास्त्रों वर्णन नहीं है जहां तक मैं पढ़ा हूं। हाँ यस,
इन महाभारत इट इज गिवन दैट कृष्णा एश्योर्ड दैट आई विल फॉरगिव सच एन ऑफेंस विच आर पनिशेबल बाय डेथ, डेथ सेंटेंस, मरणदंड देने लायक।
महाभारत से ही मैं आज सुबह सो ही पढ़ा, और भगवान कहते हैं अपराध सतम क्षाम्यम मया ही अस्य प्रतिश्वसः पुत्रस्य ते बधारहस्य मा तम शोके मनः वृथा। कहते हैं हे बुआ जी, आप चिंता मत करो, ये ऐसा अपराध करेगा आपका बेटा कि एक अपराध में भी इसे गला काट सकते हैं, एक अपराध भी। कहते हैं पुत्रस्य ते बधारहस्य, एक अपराध भी उसके वध करने के लिए एनफ है, लेकिन फिर भी मैं इसके 100 अपराध को क्षमा करूंगा। आई टू फ्रॉम महाभारत, आई जस्ट रेड टूडे।
दिस इज व्यास भारत।
महाभारत वही जो महाभारत है, अन्य आप बोल रहे पता नहीं कौन, जो मैं बोल रहा हूं वो ये महाभारत जो संस्कृत में लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन वाला अलग है, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, हिंदी भी नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, बहुत कमेंट्रियां हैं, ये भी विष्णु ढूंढ करके लाए, आपका जो भी है चेला है गुरु है जो भी पूछ लेना बाद में। हाँ माइक माइक इधर माइक। एनीवे, व्हाट वाज योर आई डिडंट हियर, क्या बोल रहे थे कि व्हाट डिड यू से? मतलब जिसको मृत्यु के ये एजेंट लोग हैं जो मार सकते हैं, यही ना, बीमारी है, बुढ़ापा है। हां जो डेथ के एजेंट के द्वारा किया जा सकता है यही कहना चाहते हो ना yeah. जो डेथ के एजेंट कर सकते हैं उसका मैं बात नहीं कर रहा हूं उससे परे जब होगा तब यही कहना चाहते हैं ना कैन यू रिपीट टेक द माइक आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड
कृष्णा एश्योर्ड दैट जस्ट लाइक प्रीवियसली इफ एनीबडी क्रिटिसाइज द किंग दे यूज टू कट हिज हेड सो दैट इज मरणदंड सो मरणदंड लायक देने वाला
कई कई जनता है
दंड दे यू नो अपराध किया तो ऐसा सब अपराध में एक क्षमा
सबका अलग है ओके दैट कैन बी वन वे ऑफ थिंकिंग एक ही एक भी वही बात है कि एक भी अपराध जो है उसके मृत्यु के कारण बन सकता है एक भी अपराध जो है उसके मृत्यु कारण बन सकता है ऐसा ऐसा मैं सौ क्षमा करता हूं तुम्हें पढ़ा सेम थिंग मे बी यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश आई एम टॉकिंग इन हिंदी लैंग्वेज डिफरेंस
नो नो ही मे बी गिविंग गालिस बट नॉट ऑल द गालिस आर यू नो पनिशेबल बाय डेथ
जो मृत्यु के योग्य होगा
yeah.
अरे माखन चोर करने वाला चोर आदमी है क्या चोर करने को गला काट देंगे यही सब ने कहा रहती है मैं क्या कहा है लड़कियों के साथ में रास रचाने वाला यही गाली दिया है ना वो मृत्यु का थोड़ा कारण बन सकता है एनीवे डजंट मैटर चलो और प्रश्न हियर
हरे कृष्ण प्रभु इट्स अ कृष्णा इज इम्पार्शियल But don't you think that he has got a soft corner for his devotees in his heart? Because in Yoga Kshema Vyaharmyam Sloka in Bhagavad Gita, he says that those who render devotional service to him, he supplies what devotee is lacking and preserves what he has. So, which he may not be able to, which Krishna may not do it in the case of all others. So is he not partial that way to his devotees?
आपके कितने बेटे हैं
एक
हैं
एक
एट एक की एट
एक वन
ओ तब गड़बड़ हो गया मान लो किसी बाप के पांच बेटे हैं तो बाप घर का मालिकाना किसको देगा आप समझ रहे हो मैं कहने का मतलब ना एक व्यक्ति के पांच बेटे हैं तो अब वो रिटायर हो रहा है मान लो तो घर का मालिक को किसको बनाएगा यू आंसर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इफ ए मैन हैज ए फाइव सन एंड एंड ऑफ द डे ही वांट्स टू रिटायर सो ही हैज टू मेक समबडी चेयरमैन ऑफ हिज कंपनी और हाउस सो हुम विल ही मेक चेयरमैन
To a competent person, he will choose.
Right. A competent person, जो उसका आज्ञा पालन करता हो जो सम्मान करता हो जो देखभाल करते जो शराबी होगा उसको चेयरमैन नहीं बनाएगा जो जुआड़ी होगा उसको चेयरमैन नहीं बनाएगा जो competent होगा तो devotee of the Lord, they are very competent. They are using their life, their word, each and every step to please Krishna. भगवान उसी श्लोक में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नौमे दृष्टि न प्रिय ए भजंती तु माम भक्त्या मैं सबके लिए बराबर हूं फिर भी जो मेरा भजन करता है उसमें मैं हूं और वह मुझ में है भगवान वहीं पर कह दिए हैं तुरंत बराबर हैं कल महाराज ने अच्छा उदाहरण दिया वो आग का आग सब में विद्यमान है लकड़ी में भी है धुआं में भी है और आग जो प्रकाशित उसमें है आग सब में विद्यमान है सेम रूप से लेकिन प्रकाशित कहां होता है सतगुण में प्रकाशित होता है तमोगुण में नहीं रजोगुण में नहीं यदि भगवान में द्वेष होता जब पुतना को मारे भगवान तो उसको नरक भेज देते ना शिशुपाल को मारे तो नरक भेज देते नहीं महाभारत में वर्णन किया गया है जो भगवान का दर्शन करते हुए मरा वो ऊंच लोगों को प्राप्त किया दर्शन करके भी जो मरा और भगवान के हाथ से जो मारा गया हाथ से जो मरता भगवान के हाथ से तो पवित्र हो जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा, जब उनके नाम में इतना महिमा है कि पत्थर पर नाम लिखे पत्थर तैर रहा था, और जिसको भगवान सर्जरी करें तो उसका भी कल्याण हो जाएगा उसमें। ये हम लोग देखते हैं विषम भाव, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो विषम दृष्टि है। हम देखते हैं शत्रु है या मित्र है, भगवान ऐसे नहीं देखते हैं, भगवान की दृष्टि अलग है। तो इस बात को समझने के लिए भगवान की दृष्टि अपनानी पड़ेगी, यानी भक्त बनना पड़ेगा। जो भक्त बनेगा तो वो समझेगा। ब्रज की गोपियां समझ गई, सबका गुणगान कर रही थी, अहो बकियाम स्तनकाल अकूट, अहो कितना सौभाग्यशाली है वह पुतना जो कि द्वेष पूर्वक कृष्ण को मारने गई थी, लेकिन उसको भी यह भगवत दृष्टि। तो भगवत दृष्टि में नीच ऊंच नहीं होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गव्यस्तनी सुनिचय पाश्च पंडिता सुंदरसिना, सबको समान देखते हैं, यह भगवत दृष्टि। आज लोगों में भगवत दृष्टि नहीं है, आज लोगों में द्वंद है, ये मेरा है ये पराये का है, ये मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है, यह दृष्टि है। और इसी दृष्टि के चलते हम भेद देखते हैं। मानव जीवन में हमें सम दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, समत्व को प्राप्त करना चाहिए, सम में समानता है, तब कोई तकलीफ नहीं।
हरे कृष्णा।
यस
हरे कृष्णा। प्रभु जी कल महाराज जैसे बता रहे थे कि दो प्रकार के सायुज्य मुक्ति होती है, एक तो ब्रह्म ज्योति में जाती है सोल,
ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म
सायुज्य। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जीवात्मा तो हमेशा अलग रहते हैं, मतलब इंडिविजुअलिटी मेंटेन होती है, भले वो ब्रह्म ज्योति में जाती है आत्मा, पर फिर भी वो अलग रहती है, वो तैरती है ब्रह्म ज्योति में। तो जब ईश्वर सायुज्य होता है तो उसमें एग्जैक्टली क्या स्थिति होती है जीवात्मा की?
मैं वहां गया नहीं हूं। वेल, जैसे कि महाराज कल बता रहे थे, ये टेम्पररी, बहुत बृहद भागवतामृत में इसका अच्छा तरह से वर्णन किया गया, लेकिन ये बहुत टेम्पररी है। इसी में कुछ समय के लिए वहां पर जीवात्मा रहता है, हमेशा नहीं रहता है, और वह वही सुख प्राप्त करता है जो भगवान विष्णु प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में उसे मुक्ति हो जाती है तुरंत, और वह अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अपने स्थिति को प्राप्त करता है, अपने धाम को प्राप्त करता है। यह कह संभव हो पाया कि शिशुपाल तादंतरक अनेक महापुरुषों को देखते देखते ही उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, जिस प्रकार जिस भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। प्रभुपाद कहते हैं शिशुपाल तादंतवक्र पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे, उनका अंतिम लक्ष्य कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था, वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु बाद में उन्हें प्रभु के लोक में रहने तथा उनके समान कायिक रूप प्राप्त करके अर्थात सारूप्य तथा सालोक मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। तो कुछ समय के लिए, जहां की ब्रह्म सायुज्य में बहुत समय तक रहते हैं, जैसे कोई थक गया हो, खूब थक गया हो और सो जाए, कब तक सोएगा? जब थकावट दूर ना हो जाए, यह है ब्रह्म सायुज्य। सो गया है, कुछ नहीं पता नहीं, जब जगेगा तो फिर आरूप क्षीण पुनः यहां पर आने का इच्छा करेगा। और कोई प्रश्न? बामन सिद्धि लाल समाधि जी है क्वेश्चन।
What is the proper etiquette in speech?
What is proper etiquette?
In speech, like you mentioned about being straightforward and speaking behind the back. Because sometimes it's not just criticizing, but having to speak something that we want to discuss, something that we don't agree with. So if you can explain this.
It is always good to speak truth and be straightforward. That is first. Second, it is always good to speak truth, but speak by via media. If you cannot speak, you can tell the same thing to someone who is equal to that person whom you want to speak, whether father or guru or temple president or whoever. So he can relate same thing to him. But never ever talk back. No use. Whom are you talking in backside? That's kalpajalpa. You have some good suggestion or something good to say? Well, it is best that tadvidhi pranipatena, go humbly and speak out. If you can't do that, then second thing, if some equals are there, you can mention and he can go and present same thing. Or nowadays it is easy to send an email. Send an email. But never ever talk in back. That is called prajalpa. And prajalpa is not good for spiritual life. Any kind of jalpa which has nothing to do with Krishna is prajalpa. It's not necessarily only criticism. When good suggestion, a good thing also, talking back that is not good. Because you are not going to talk to yourself, you will talk to somebody. And you don't know the car of that person. That person may have some grudge against whom you are talking, although you are talking good thing. And he will take me the other way around. Says, well, not only me, even she also thinks like that. So necessarily creating disturbance. Clear, Siddhi? Any other question? All right, so let's stop here. Srila Prabhupada ki jai, Granthasrimad Bhagavatam ki jai.